एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं सदियों पीछे, 14वीं सदी के यूरोप में, एक ऐसी दुनिया जहां शूरवीरों का बोलबाला था, जहां युद्ध और राजनीति की क्या कहते हैं एक अलग ही बिसात बिछी थी।
और हमारा गाइड कौन होगा? जॉन फ्रॉयसार्ट और उनकी मशहूर किताब द क्रॉनिकल्स। ये सिर्फ, आप समझिए, इतिहास की कोई मोटी किताब नहीं है।
हाँ, बिल्कुल नहीं।
ये उस जमाने की सोच, उसके आदर्शों और हाँ, उसकी कड़वी हकीकतों में झांकने का एक जरिया है।
सही कहा।
और देखिए, सवाल ये उठता है कि आज, मतलब इस इतनी तेज भागती दुनिया में, सैकड़ों साल पुरानी इन कहानियों का क्या मतलब है? तो मतलब बहुत कुछ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई, लीडरशिप क्या होती है, कैसे ऊंची ऊंचे आदर्श और जमीनी हकीकत में टकराव होता है, और सबसे जरूरी बात, कहानियां कैसे इतिहास बनाती हैं, कैसे हमारी समझ को एक आकार देती हैं।
हाँ, बिल्कुल। और हम आज यही देखेंगे कि फ्रॉयसार्ट ने क्या भूमिका निभाई। क्या वो सिर्फ एक इतिहासकार थे या उससे ज्यादा एक कहानीकार, और उनका मकसद क्या था ये सब लिखने का? खासकर वो जो शूरवीरता का कोड था, उसे अमर बनाने का उनका जो लक्ष्य था।
तो पहले ये जान लें कि ये जॉन फ्रॉयसार्ट थे कौन।
हाँ, जरूरी है। इनका जीवन काल लगभग 1337 से 1405 तक। वो आज के बेल्जियम के पास एक शहर है, वैलेंसियन, वहां से थे। सिर्फ कवि या इतिहासकार ही नहीं, दरबारी भी थे। मतलब वो कोई कोने में बैठकर लाइब्रेरी में लिखने वाले नहीं थे।
नहीं, वो उसी दुनिया का हिस्सा थे जिसके बारे में लिख रहे थे, और यही उनकी खासियत थी, उनकी पहुंच, आप सोचिए, गजब की थी।
हाँ, कैसे?
वो इंग्लैंड की रानी फिलिपा ऑफ हेनॉल्ड के दरबार में रहे। फिलिपा खुद भी हेनॉल्ड से थीं, फ्रॉयसार्ट के इलाके से, फिर फ्रांस और यूरोप के दूसरे शासकों के संपर्क में भी आए। तो इससे हुआ क्या, वो उस जमाने के सबसे ताकतवर लोगों के बहुत करीब पहुंच गए।
अच्छा, तो मतलब एक तरह के उस जमाने के हाई प्रोफाइल रिपोर्टर कह सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक ट्रैवलिंग रिपोर्टर जो पूरे पश्चिमी यूरोप में घूम रहा है, लड़ाइयों, घेराबंदी, राजनैतिक मीटिंग्स, इनके चश्मेदीदों से मिल रहे हैं, शूरवीरों से, सामंतों से, राजाओं से, मतलब सीधे बात कर रहे हैं।
और उनका मकसद क्या था इस सबसे, ये जो महान कारनामे थे?
हाँ, उन्हें दर्ज करना, ताकि वो भुलाए ना जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, खासकर शूरवीर वर्ग के लोग, उनसे प्रेरणा ले सकें। यही उनका मुख्य लक्ष्य था।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर, द क्रॉनिकल्स। ये आखिर है क्या चीज?
ये यूरोप के लगभग 75 सालों का, मतलब मोटे तौर पर 1325 से 1400 तक का, एक बहुत बड़ा फैला हुआ इतिहास है।
और इसके सेंटर में है वो मशहूर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का 100 साल लंबा युद्ध, है ना, 100 ईयर्स वॉर जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, वही इसका केंद्र बिंदु है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ तारीखों और संधियों की लिस्ट नहीं है। फ्रॉयसार्ट का जोर घटनाओं का विश्लेषण करने पे उतना नहीं है।
हाँ, मतलब वो ये नहीं बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके आर्थिक कारण क्या थे।
नहीं, उतना नहीं। उनका जोर ज्यादा है उस दौर के शूरवीरों की बुनियाद, उनके आदर्शों का एक भव्य चित्र बनाने पर, एक तरह से उस शूरवीरता के कोड का महिमा मंडन करने पर। यही उनका मकसद था।
तो ये किताब पाठक को उस जमाने की सैर कराती है, जैसे लड़ाइयों के मैदान, राजदरबार, किले।
हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड फ्रांस का झगड़ा तो है ही, पर स्कॉटलैंड, स्पेन, फ्लैंडर्स जैसे इलाकों की कहानियां भी इसमें शामिल हैं। और सिर्फ राजा महाराजाओं की बातें नहीं है इसमें।
अच्छा, और क्या है?
समाज में जो उथल पुथल मची थी उस वक्त, जैसे फ्रांस में जाकरी नाम का किसान विद्रोह हुआ था, या इंग्लैंड का पीजेंट्स रिवोल्ट, उनका जिक्र भी आता है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि फ्रॉयसार्ट का नजरिया पूरी तरह से ऊंचे तबके वाला था।
मतलब वो अमीरों और शूरवीरों के पक्ष में थे।
हाँ, बहुत ज्यादा। वो इन विद्रोहों को समाज के लिए खतरा मानते थे। गरीबों की मुश्किलों से उन्हें कोई खास हमदर्दी नहीं थी, ऐसा लगता है। उनकी भूमिका यहाँ एक दरबारी इतिहासकार की ज्यादा दिखती है।
तो किताब में हमें युद्ध की चालें, किले जीतने के तरीके, कूटनीति, राजाओं की जिंदगी,
ये सब मिलेगा।
एडवर्ड 3, चार्ल्स 5।
हाँ, और सबसे ऊपर, जैसा हमने कहा, शूरवीरता की संहिता, कोड ऑफ शिवलरी, उसका बहुत रंगीन ब्यौरा है। फ्रॉयसार्ट घटनाओं को सिर्फ लिख नहीं रहे थे, वो उन्हें एक नाटक की तरह पेश कर रहे थे,
ताकि वो आदर्श चमके और लोगों को याद रहें। उनका लक्ष्य यही था।
बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि द क्रॉनिकल्स कोई एक बार में लिखी गई किताब नहीं है। ये चार बड़ी किताबों, मतलब बुक्स में बंटी हैं, और फ्रॉयसार्ट ने ये अपने जीवन के अलग अलग टाइम पे लिखी।
अच्छा, तो क्या हर किताब में नजरिया बदलता है?
हाँ, थोड़ा थोड़ा उनका जोर, उनका फोकस बदलता दिखता है।
उसीलिए इन किताबों में थोड़ा झांकते हैं संक्षेप में। पहली किताब बुक आए, जो करीब 1325 से 1378 तक का समय कवर करती है। ये सबसे ज्यादा मशहूर है ना?
हाँ बिल्कुल, ये 100 वर्षीय युद्ध की शुरुआत का माहौल बनाती है। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड 3 का फ्रांस की गद्दी पर दावा वगैरह, और इस हिस्से में फ्रॉयसार्ट का जोश देखते ही बनता है। वो शूरवीरता का, खासकर अंग्रेजों की बहादुरी का जमकर गुणगान करते हैं।
शायद इसलिए कि उस वक्त वो इंग्लैंड के शाही दरबार से जुड़े थे।
हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। यहाँ क्रेसी 1346 और पोइटियर्स 1356 जैसी लड़ाइयों का जिक्र है, जहाँ अंग्रेजों ने बड़ी चौंकाने वाली जीत हासिल की थी।
क्रेसी में वो तीरंदाजों वाली बात।
हाँ, कैसे अंग्रेज तीरंदाजों ने फ्रांसीसी शूरवीरों के होश उड़ा दिए थे, उसका वर्णन कमाल का है। और पोइटियर्स में तो फ्रांस के राजा जॉन द्वितीय ही बंदी बना लिए गए थे।
बाप रे।
तो एडवर्ड 3 और उनके बेटे ब्लैक प्रिंस इस किताब में हीरो की तरह उभरते हैं। फ्रॉयसार्ट युद्ध को जैसे एक शानदार टूर्नामेंट की तरह दिखाते हैं, जहां इज्जत और बहादुरी सबसे ऊपर है।
ठीक है, अब दूसरी किताब बुक 2, जो करीब 1378 से 1385 तक है, यहाँ क्या कहानी बदलती है?
हाँ, यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। अब फ्रॉयसार्ट का ध्यान यूरोप के मुख्य भूभाग पर है, खासकर फ्लैंडर्स पर, जो आज का बेल्जियम नीदरलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ शहरों की राजनीति, व्यापारियों और कारीगरों के आपसी झगड़े ज्यादा दिखते हैं।
अच्छा, मतलब सिर्फ शूरवीरों की बात नहीं?
नहीं, जैसे गेंट शहर के बागियों और उनके काउंट के बीच का संघर्ष, फिर रूसबेक की लड़ाई 1382, जहां फ्रांसीसी सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। तो यहां शूरवीरता के किस्से तो हैं, पर साथ ही शहरों की बढ़ती ताकत और समाज के अंदर का तनाव भी नजर आता है।
और फ्रॉयसार्ट का नजरिया, वो अब भी अमीरों के साथ हैं?
हाँ, नजरिया तो अब भी ऊंचे तबके वाला ही है, लेकिन वो देख रहे हैं कि आम लोग भी संगठित होकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। और यही हमें फ्री कंपनीज का जिक्र मिलता है।
फ्री कंपनीज, ये कौन थे?
ये भाड़े के सैनिकों के गिरोह थे। मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा होता था तो ये लूटपाट करते थे। ये शूरवीरता के आदर्शों का एक तरह से अंधेरा पक्ष दिखाते हैं, कि ये ऊंचे सिद्धांत अक्सर आम लोगों पर लागू नहीं होते थे।
ये दिलचस्प है। अब तीसरी किताब बुक 3, लगभग 1385 से 1388, इसके बारे में क्या खास है?
ये किताब फ्रॉयसार्ट के अपने सफरनामों पर आधारित लगती है। वो दक्षिणी फ्रांस में काउंट ऑफ फॉक्स गैस्टन द फोर नाम के एक बहुत ताकतवर सामंत के दरबार में रहे थे, और वो दरबार उस जमाने में जानकारी का एक बड़ा सेंटर था। फ्रॉयसार्ट खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने वहां घूम घूम कर लोगों से बात करके कहानियां इकट्ठा की। उनकी भूमिका यहाँ एक रिपोर्टर और संग्राहक की ज्यादा स्पष्ट होती है।
तो इसमें कहाँ की कहानियां हैं?
इसमें स्पेन और पुर्तगाल में चल रहे युद्ध अभियानों का जिक्र है, जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग दावेदारों का साथ दे रहे थे। और एक बहुत मशहूर किस्सा है ऑटोबर्न की लड़ाई 1388 का।
ऑटोबर्न?
हाँ, ये स्कॉटलैंड के अर्ल ऑफ डगलस और अंग्रेज हॉटस्पर पर्सी के बीच रात में हुई एक भयंकर लड़ाई थी। फ्रॉयसार्ट ने इसे बड़े नाटकीय और जाहिर है शूरवीरतापूर्ण अंदाज में बयान किया है। ये उनकी कहानी कहने की कला का बेहतरीन नमूना है।
और वो किसान विद्रोह, उनका जिक्र भी आता है यहाँ?
हाँ, इसी दौर में पहले जिक्र किए गए किसान विद्रोहों जैसे जैकरी या पीजेंस रिवोल्ट, उनकी गूंज भी सुनाई देती है। फ्रॉयसार्ट उन्हें अराजकता ही मानते हैं, पर अनजाने में ही सही वो उस दौर के सामाजिक तनाव और लोगों की मुश्किलों को भी दर्ज कर जाते हैं।
ठीक है, और अब चौथी और आखिरी किताब बुक 4, जो करीब 1389 से 1400 तक हैं। आपने कहा था कि यहाँ आते आते फ्रॉयसार्ट की आवाज थोड़ी उदास लगती है।
हाँ, ऐसा लगता है वो अब बूढ़े हो चले हैं। ये किताब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई शांति संधियों, दरबारी साजिशों और दोनों देशों की अंदरूनी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देती है। शायद फ्रॉयसार्ट उस सुनहरे वीर युग को याद कर रहे हैं जो उनकी जवानी में था और अब गुजरता हुआ सा लग रहा था। उनका जो लक्ष्य था शूरवीरता का जश्न मनाने का, वो अब फीका पड़ता दिख रहा था।
और इसमें सबसे बड़ी घटना कौन सी है?
सबसे बड़ी घटना है इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय का तख्ता पलट, जिन्हें हेनरी चतुर्थ ने हटा दिया था। फ्रॉयसार्ट रिचर्ड के दरबार को जानते थे और इस घटना को एक बड़ी त्रासदी मानते हैं, मतलब राजशाही के पवित्र नियम का उल्लंघन।
तो यहाँ शूरवीरता का आदर्श और पीछे चला जाता है।
हाँ बिल्कुल, दुनिया ज्यादा सियासी, ज्यादा मौका परस्त और धोखेबाजी से भरी लगती है। क्रेसी और पॉइटियर्स के हीरो अब नहीं रहे। ऐसा लगता है फ्रॉयसार्ट जिस दुनिया का जश्न मनाने निकले थे वो उनकी आंखों के सामने ही बदल गई थी। एक युग का अंत हो रहा था।
तो इन चारों किताबों की इस यात्रा के बाद अगर हम मुख्य बातों या संदेशों को समेटना चाहें तो क्या निकल कर आता है? सबसे पहला तो शायद वही है, शूरवीरता का जश्न और उसका विरोधाभास।
हाँ बिल्कुल, फ्रॉयसार्ट के लिए शूरवीरता ही सब कुछ थी। युद्ध में हिम्मत, अपने राजा के प्रति वफादारी, दुश्मन के प्रति उदारता, अगर वो भी ऊंचे खानदान का हो तो, और सबसे बढ़कर इज्जत की तलाश, यही उनका मुख्य लक्ष्य था दिखाना।
लेकिन जैसा आपने कहा, वो खुद ही इसके विरोधाभास भी दिखा देते हैं, शायद अनजाने में। लड़ाइयों की क्रूरता, आम नागरिकों का कत्लेआम।
हाँ, जैसे ब्लैक प्रिंस का लिमोज शहर में किया गया नरसंहार, और कैसे ये शूरवीर असल जिंदगी में इन ऊंचे आदर्शों से फिसल जाते थे, ये भी दर्ज करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई कंपनी अपनी कोर वैल्यूज की बड़ी बड़ी बातें करे पर अंदर कुछ और ही चल रहा हो।
सही कहा। तो फ्रॉयसार्ट की भूमिका यहाँ सिर्फ महिमा मंडन करने वाले की नहीं, बल्कि अनजाने में ही सही एक आलोचक की भी बन जाती है।
कह सकते हैं। दूसरा अहम मुद्दा है अभिजात्य, यानी ऊंचे तबके का नजरिया। फ्रॉयसार्ट की दुनिया में इतिहास सिर्फ राजा, ड्यूक, अर्ल और शूरवीर बनाते हैं।
आम आदमी की कहानी कहाँ है?
या तो गायब है या फिर जब वो विद्रोह करता है, जैसे जैकरे या किसान विद्रोह, तो उसे एक जंगली बेकाबू भीड़ की तरह दिखाया जाता है। उनकी मांगे क्या थीं, उनकी मुश्किलें क्या थीं, इस पर फ्रॉयसार्ट ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये हमें सिखाता है कि कोई भी कहानी पढ़ते या सुनते वक्त ये पूछना कितना जरूरी है कि ये किसके नजरिए से कही जा रही है।
बिल्कुल। तीसरा, युद्ध और राजनीति का नाटकीय प्रदर्शन। आपने बताया था चमकते कवच, झंडे, बिगुल।
हाँ वो सब व्यक्तिगत शान और दिखावा बहुत मायने रखता था। ये उस मध्ययुगीन सोच को दिखाता है जहाँ बाहरी रूप रंग प्रदर्शन उतना ही जरूरी था जितना कि नतीजा। युद्ध एक तरह का भव्य तमाशा था।
चौथा, चश्मदीद गवाही और यादों को सहेजना। फ्रॉयसार्ट बार बार बताते हैं कि उन्हें ये जानकारी कहाँ से मिली, जैसा कि मुझे फलां शूरवीर ने बताया। उनकी भूमिका यहाँ एक इतिहासकार की है जो स्रोतों को दर्ज कर रहा है।
हाँ, और वो खुद को महान कारनामों को भुला दिए जाने के अंधेरे से बचाने वाले के तौर पर देखते थे। उनका लक्ष्य था स्मृति को संरक्षित करना। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास पहले लोगों की यादों और जुबानी किस्सों से लिखित रूप लेता है।
और पांचवा, किस्मत यानी फॉर्चुना की भूमिका। आपने जिक्र किया था ना कि कैसे भाग्य का पहिया घूमता है।
हाँ, फ्रॉयसार्ट अक्सर बताते हैं कि कैसे किस्मत बदलती है। आज का हीरो कल का कैदी बन सकता है। यह दिखाता है कि बहादुरी के बावजूद सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। ये उस जमाने का आम नजरिया था और कहानी को और भी नाटकीय बनाता था।
अच्छा, फ्रॉयसार्ट के लेखन में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो उनके पूरे काम का निचोड़ हैं, ऐसा कहा जाता है।
हाँ, कुछ मुख्य विचारों पर नजर डाल सकते हैं। पहला तो उनका मिशन स्टेटमेंट ही है जो उनके लक्ष्य को साफ करता है। मैंने ये काम इसलिए शुरू किया है ताकि फ्रांस और इंग्लैंड के युद्धों के दौरान हुए सम्मानजनक उद्यमों, महान कारनामों और हथियारों के कर्तव्यों को दर्ज और यादगार बना सकूं, ताकि बहादुर लोग ऐसे उदाहरणों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हों।
बिल्कुल साफ है, प्रेरणा देना उनका मकसद था। दूसरा, क्रेसी की लड़ाई का वो वर्णन।
हाँ, अंग्रेज धनुर्धरों ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने तीर इतनी तेजी और घनेपन से चलाए कि मानो बर्फ गिर रही हो। जब जेनोआ के सैनिकों ने तीरों को अपने सिर, बाहों और सीनों में घुसते महसूस किया तो कई ने अपने क्रॉसबो फेंक दिए और हार मानकर लौट गए। ये उनके लिखने की ताकत दिखाता है।
विशद वर्णन। तीसरा, जैकरी विद्रोह पर उनकी टिप्पणी उनके पूर्वाग्रह को दिखाती है। ये दुष्ट लोग बिना किसी कप्तान या कवच के इकट्ठा हुए और जितने भी सज्जनों को पकड़ सके उन्हें लूटा, जलाया और मार डाला। निश्चित रूप से ईसाई पुरुषों के बीच ऐसे क्रूर कर्म कभी नहीं देखे गए। दुष्ट लोग कहना ही काफी है उनका नजरिया समझने के लिए।
हाँ, चौथा, ऑटोबर्न की लड़ाई में अर्ल ऑफ डगलस की मौत पर यह कहना कि इज्जत ज्यादा जरूरी है। भले ही वो मर गया था, उसका झंडा नहीं गिरा और लड़ाई उसके नाम पर जीती गई। स्कॉट या अंग्रेज हर कोई से एक सबसे शूरवीर और महान मामला घोषित कर रहा था। मतलब नतीजा नहीं, तरीका मायने रखता है, शूरवीरता वाला तरीका।
ये उनके आदर्शों को दिखाता है। और पांचवा, किस्मत पर उनकी बात। भाग्य जो सभी सांसारिक चीजों को ऊपर उठाता और नीचे गिराता है, उन्हें लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने की अनुमति नहीं देगा। ये उस दौर की सोच और कहानी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है।
तो इन सारी बातों का, इन किस्सों का आज के जमाने में क्या मतलब है, क्या सीख सकते हैं हम?
हाँ, ये अहम सवाल है। पहली बात तो शायद नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में। फ्रॉयसार्ड दिखाते हैं कि लीडर का अपना चरित्र, लोगों को प्रेरित करने की उसकी क्षमता, दूसरों की इज्जत करना, ये चीजें हमेशा मायने रखती हैं, चाहे वो 14वीं सदी हो या 21वीं।
बिल्कुल। और कहानी कहने की ताकत, नैरेटिव कितना पावरफुल होता है। फ्रॉयसार्ड ने 100 साल के युद्ध की हमारी समझ को सदियों तक प्रभावित किया। यह हमें सिखाता है कि कैसे कहानियां गढ़ी जाती हैं और वो कैसे हमारी सच्चाई बन जाती हैं।
आज की राजनीति, मीडिया, विज्ञापन, सब जगह यही तो है। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये कहानी कौन सुना रहा है और क्यों।
सही बात है। और वो आदर्शों और हकीकत के बीच का फासला, शूरवीरता की बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ क्रूरता और धोखेबाजी भी दर्ज है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी इंसान, संस्था या सरकार के कहे और किए के बीच के फर्क को देखना कितना जरूरी है। क्या वो जो कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं?
बिल्कुल। और आखिर में पूर्वाग्रह को पहचानना। फ्रॉयसार्ड अपने झुकाव को छुपाते नहीं, वो साफ तौर पर अमीरों और शूरवीरों के पक्ष में है। ये हमें सिखाता है कि हम जो भी पढ़ें या सुने, चाहे वो इतिहास हो या आज की खबरें, उसे आलोचनात्मक नजरिए से देखें।
हमेशा पूछें कि क्या नजरअंदाज किया जा रहा है, किसकी कहानी नहीं सुनाई जा रही। फ्रॉयसार्ड को पढ़ने से हमें आज के स्रोतों को ज्यादा बारीकी से समझने में मदद मिलती है ना?
हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर फ्रॉयसार्ड की क्रॉनिकल से सबसे बड़ी बात शायद ये सीखने को मिलती है कि ये 14वीं सदी का सिर्फ तथ्यात्मक ब्यौरा कम और उस जमाने के शासक वर्ग की सोच, उनकी मानसिकता में उतरने का एक अनोखा मौका ज्यादा है।
सही कहा। इसे पढ़कर हम समझ पाते हैं कि उस दौर के ताकतवर लोग किन चीजों को अहमियत देते थे, दुनिया को कैसे देखते थे और इतिहास में कैसे याद रखा जाना चाहते थे। उनकी भूमिका सिर्फ रिकॉर्डर की नहीं, बल्कि एक तरह से अपने वर्ग के मूल्यों के प्रचारक की भी थी।
बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि समाज अपनी केंद्रीय कहानियां और अपने मिथक कैसे बनाता है और उन्हें कैसे जिंदा रखता है। फ्रॉयसार्ड सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो एक खास किस्म का इतिहास, शूरवीरता का मिथक गढ़ रहे थे और उसे बढ़ावा दे रहे थे। उनका लक्ष्य यही था।
तो किताब रोमांचक है, भव्य है।
हाँ, पर साथ ही गहरी पक्षपाती भी। और शायद इसी तनाव में, इसी विरोधाभास में इसका असली महत्व छुपा है। ये हमें उस दौर की सच्चाई के साथ साथ उसके सपनों और भ्रमों को भी दिखाती है।
और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम जिन कहानियों और नैरेटिव से घिरे हैं, चाहे वो न्यूज हो, फिल्में हो, सोशल मीडिया हो, वे हमारे समय के आदर्शों और सामाजिक हकीकतों की हमारी समझ को कैसे बना बिगाड़ रहे हैं।
हाँ, और कौन है आज के फ्रॉयसार्ड जो हमारे युग की कहानी लिख रहे हैं और किस मकसद से, सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।